किसी साहब ने सवाल यहाँ रखा है लिखकर कि जब कोई इंसान अपनी आंखें बंद करता है क्या वो रब के स्याह नूर को देख रहा होता है वो रात करते हैं। असल में जो अंधेरा है वो जुल्मत की स्याही की निशानदेही करता है और रब के नूर की बिल्कुल बरक्स उसके उलट जुल्मत का अंधेरा है। रब का नूर, ये गालिबन गलतफहमी शायद इस वजह से हो गई कि मैंने पिछली दो नशिस्तों में ये अर्ज किया था कि अल्लाह के नूर की बारिश जहां मुसलसल होती है वहां चमकदार स्याही पैदा हो जाती है, लेकिन वो स्याही जेट ब्लैक नहीं होती, उसमें सफेदी की आमेजिश होने के बाद उसमें चमक आती है, जबकि जुल्मत का अंधेरा पिच डार्क होता है, जेट ब्लैक होता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो अंधेरा है, अल्लाह के नूर की स्याही नहीं है। लेकिन आंखें बंद करने का एक फायदा भी है कि हमारा राबता, या यूं कहिए कि हमारे जहन का राबता, कम से कम देखने की हद तक बाहर की दुनिया से मुनक़ता हो जाता है और जहन भटकता नहीं। जो चीज हम सोचना चाहते हैं या जहां अपनी तवज्जो हम मरकूज करना चाहते हैं उस पर तवज्जो मरकूज करना आसान हो जाता है। सिर्फ इंसान के कान काम कर रहे होते हैं, देख नहीं सकता, तो कम से कम ज़हनी राबता बाहर की दुनिया से निस्फ हद तक कम हो जाता है। कंसंट्रेशन इंसानी जिंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसको यकसुई भी कहा जाता है उर्दू में, और इस यकसुई को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ मजाहब में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। बुद्ध मत में तवज्जो मरकूज करने की अहमियत बेपनाह है और बख्शु लोग, बुद्ध मत के जो तारकुद दुनिया लोग हैं या जो रूहानियत की राह पे चल रहे होते हैं उन्हें बख्शु कहते हैं। ये बख्शु मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे जहन का राबता दुनिया के शोर व शर और उस पर दिखाई देने वाली चीजों से कट जाए, और इसकी बाकायदा वो मशकें करते हैं। उन मशकों तक जाने से पहले ये लोग योगा के जरिए से अपनी मुख्तलिफ सलाहियतों को जिला बख्श देते हैं। जब इनकी मुख्तलिफ सलाहियतें चमक जाती हैं तो फिर ये यकसुई पर काम करना शुरू करते हैं। हिंदुइज्म में भी इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है यकसुई की। साधु लोग भी मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को अजियत देते हैं और उसे बर्दाश्त करना सीखते हैं, हत्ता के वो अजियतें, जिस्मानी अजियतें उनके लिए रूटीन बन जाती हैं और तकलीफ उनके कंसंट्रेशन को खत्म नहीं कर पाती, उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। इस जमाने में गालिबन बर्ट्रेंड रसल ने एक किताब लिखी थी, दी हैप्पीनेस। उस किताब में बर्ट्रेंड रसल ने जिक्र किया कि मुझे सच्ची खुशी की तलाश थी, मैं देखना चाहता था कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसे सच्ची खुशी हासिल हो, दर हकीकत खुश हो। तो उसने बहुत से नाम मेंशन किए जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराह भी थे, मजहबी लीडर्स भी थे, स्कॉलर्स भी थे, हर वॉक ऑफ लाइफ से हर स्टेटस के लोगों को उसने चेक किया और इस सिलसिले में दुनिया भर में वो चक्कर लगाता रहा। तो उसने ये लिखा कि मैं जब अपना ये दौरा, स्टडी टूर टर्मिनेट कर रहा था तो उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट तिब्बत के करीब जंगलात थे। ये तमाम सफर करने के बाद और सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी भी शख्स को सच्ची खुशी हासिल नहीं है, कहीं न कहीं उसकी तह में दुख मौजूद हैं। लेकिन अजीब इत्तफाक ये हुआ कि जब वो टर्मिनेट कर रहा था अपना टूर, तो तिब्बत के जंगलात के करीब उसे एक साधु मिला और बर्टन रसल के कहने के मुताबिक वो साधु वाहिद आदमी था जिसमें मैं सच्ची खुशी पा सका। लेकिन जिस अंदाज में उसको सच्ची खुशी हासिल थी, उस अंदाज को देख के मैंने उस सच्ची खुशी को पाने से तौबा कर ली। उसने देखा कि वो साधु जिस्म पर मिट्टी मले हुए एक ऐसे तख्ते पर लेटा है जिसमें कील सीधे रुख पर गड़े हैं, उनके जो पॉइंटेड हिस्सा है वो ऊपर को है और साधु उन पॉइंटेड कीलों पर लेटा हुआ है, उसके जिस्म से जगह जगह से खून निकला हुआ है। लेकिन वो साधु बड़े मजे से उस पर लेटा हुआ था, खुश था। वो एक आदमी उसे मिला जो जिसको सच्ची खुशी हासिल थी, लेकिन उसने तौबा कर ली, ये खुशी मैं हासिल नहीं कर सकता क्योंकि इस अजियत से नहीं गुजरता। साधु लोग अपने आप को तकलीफें देते हैं, इसी तरह बख्शू हैं ये लोग, हफ्से दम पर भी तवज्जो बहुत देते हैं। जब हफ्से दम की बात चली है तो मैं एक चीज और आपसे अर्ज कर दूं कि कभी आप नोट कीजिएगा और इसमें शायद एक बीमारी का इलाज भी आज आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं मैं, खासा इंटरेस्टिंग इलाज है वो। हर इंसान के दो नॉस्ट्रिल्स हैं, कभी अपने हाथ के उल्टा हिस्सा, ये जो हाथ का उल्टा हिस्सा है ये जल्द हमारी बहुत हसास है, उन चीजों को भी महसूस कर ली थी जिसको हमारे हाथ का सीधा हिस्सा वो महसूस नहीं कर पाता। तो आप अपनी एक नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए एक साइड से और इसी एक नॉस्ट्रिल से जो खुली रखेंगे आप इनहेल कीजिए और फिर अपने सांस को एक्सहेल कीजिए। जब आपका सांस खारिज होगा तो उसका टेम्परेचर अपने हाथ के उल्टे हिस्से पर महसूस कीजिए। इसी तरह फिर दूसरी नॉस्ट्रिल को बंद कर लें एक उंगली से और इस नॉस्ट्रिल से सांस लें और सांस को खारिज करें। तो दोनों तरफ से जो सांस निकलेगा एक्सहेल होगा उसके टेम्परेचर में आपको फर्क महसूस होगा। एक तरफ से इंसान का जो सांस एक्सहेल होता है वो रिलेटिवली कम टेम्परेचर पर होता है बनिस्बत दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस खारिज जो होता है उसके टेम्परेचर से। और हर इंसान के फर्क है कि किसी के राइट नॉस्ट्रिल से गर्म सांस खारिज होता है और बाईं से रिलेटिवली कम टेम्परेचर का सांस, और कुछ लोगों के लेफ्ट से सांस गर्म ज्यादा होगा और राइट से रिलेटिवली कम होगा। अगर किसी इंसान को टेम्परेचर हो जाए तो जिस नॉस्ट्रिल से गर्म सांस उसके एक्सहेल हो रहा है उसको बंद करके ठंडी, रिलेटिवली ठंडी साइड से सांस लेना और खारिज करना शुरू कीजिए, कुछ देर के बाद उसका बुखार उतर जाएगा। ये एक अजीब सा नुस्खा है इसमें। तो इस सांस की आमदोरफ्त जो है, इसका इनहेल करना और एक्सहेल करना, इंसानी जिस्म और जहन का इससे बहुत ताल्लुक है। तो बख्शू लोग सांस की आमदोरफ्त के कंट्रोल हासिल करने के लिए बेपना मेहनत करते हैं। इसमें एक एक्सरसाइज हफ्से दम की होती है। मैं बुद्धिज्म की बात कर रहा हूं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये सांस को रोकने की प्रैक्टिस करते हैं और सांस को रोक के बैठ जाएंगे। आम इंसान भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि हम कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाएं। और योगा के जो पोस्चर्स हैं जिसको योगा की जुबान में आसन कहते हैं, उससे आप वाकिफ हैं कि किस तरह से वो क्रॉस लेग बैठा जाता है और दोनों बाजू सीधे करके अपने घुटनों पर रख के और एक उंगली और एक अंगूठा, ये भी अर्ज कर दूंगा कि इससे होता क्या है जब आप इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को मिला के इस तरह बैठते हैं बाकी उंगलियां सीधी रख के, वो भी अर्ज करता हूं कि वो क्या केमिकल चेंज आती बॉडी में उससे। उससे वो फिर कंसंट्रेशन के अगले लेवल पर जब जाते हैं तो हब से दम पर चले जाते हैं और सांस रोक के बैठ जाते हैं। इसकी आखिरी हद ये है कि इन्हें एक कब्र खोद के उसमें डाल दिया जाता है और उस कब्र को बंद कर देते हैं जिस तरह हम मुर्दे दफनाते हैं, और एक हफ्ते के बाद इसको निकाल लेते हैं, वो जिंदा होता है बंदा, हालांकि उसके अंदर तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है कब्र में। वो हफ्सदम ही का खेल है सारा। इससे पहली स्टेज एक ये आती है कि वो हेड स्टैंड बनाते हैं, अब वो अजीब गरीब किस्म का हेड स्टैंड बनता है, उनका सर और गर्दन शोल्डर्स तक जमीन में दफन कर देते हैं, बाकी धड़ उसका सीधा खड़ा होता है सस्पेंडेड इन द एयर, और वो 12 घंटे 24 घंटे उसी हालत में गुजार लेते हैं। वो खेल सारे का सारा दिमाग का है और कुछ नहीं, जहन का, कि जब उन्होंने अपने जहन का ताल्लुक अपनी उस जिस्मानी अजियत से हटा लिया तो उन्हें वो कंट्रोल हासिल हो जाता है। हमें जिस्म की तकलीफ का एहसास उस वक्त होता है जब हमारे जहन को एहसास हो रहा हो। अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं कि अपने जहन को अपनी जिस्मानी तकलीफ और जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियों से हटा लें तो वो तकलीफ का एहसास खत्म हो जाएगा। इसका एक वाकया यहां लाहौर ही में कुछ अर्सा पहले पेश आया था। एक बड़े नेक आदमी गुजरे हैं, मौलाना मोहम्मद हसन साहब, बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह के मुकर्रबीन में से थे। उनकी टांग में शुगर की वजह से इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टरों का कहना यह था कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, दो ही सूरतें हैं कि ये जहर आपके जिस्म में फैल जाएगा और मौत वाकई हो जाएगी, दूसरी सूरत में टांग काटनी पड़ेगी। तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे जो सीनियर सर्जन भी थे, फैसला ये हुआ कि सर्जरी उनसे करवा ली जाए और वो टांग को जिस्म से अलहदा कर दें। वो सर्जन साहब भी मौलाना मोहम्मद हसन साहब के अकीदतमंदों में से थे, तो उन्होंने ऑपरेशन से एक रोज पहले उन्हें ब्रीफ किया और मौलाना मोहम्मद हसन साहब के दिल से ऑपरेशन का खौफ निकालने के लिए उन्होंने कहा कि हजूर, मैं बहुत एहतियात से ऑपरेशन करूंगा, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, मैं आपको जनरल एनेस्थीसिया दे दूंगा और उसी आलम में आपकी टांग को अलहदा कर देंगे। तो मौलाना साहब ने ये पूछा कि ये एनेस्थीसिया क्या होता है, उन्हें एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये इसमें नशावर चीजें हैं। तो सर्जन साहब ने कहा कि जी हाँ, इसमें नशावर चीजें तो हैं, तो फरमाया कि वो हराम है, मैं एनेस्थीसिया नहीं लूंगा। जी इसके बगैर तो टांग का एम्प्यूट करना बड़ा मुश्किल है, वो तो कोई भी आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, एनेस्थीसिया न देना, बस अल्लाह का नाम लेके तुम मेरी टांग जो है मेरे जिस्म से अलहदा कर देना। यहां मियो हॉस्पिटल में तशरीफ ले गए मौलाना साहब, ऑपरेशन टेबल पर डाला तो उन्होंने, मौलाना साहब ने कहा कि जब तैयारी तुम्हारी मुकम्मल हो जाए तो मुझे बता देना, मैं अल्लाह की याद शुरू कर दूंगा और तुम टांग काट देना। सर्जन साहब ने तैयारी करने के बाद उनके खिदमत में अर्ज किया कि हजरत, तैयारी मुकम्मल है, इजाजत हो तो मैं टांग काटूं। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मौलाना साहब अपनी तस्वीर में लग गए और जब आधे घंटा गुजर गया, पौन घंटा गुजरा, तो मौलाना साहब ने सर्जन से कहा कि भाई वो तुम ऑपरेशन कर भी डालो, अब तो बहुत देर हो गई, क्या कर रहा हो? मैंने कहा हजूर, वो तो ऑपरेशन कभी का हो चुका, हम तो मरहम पट्टी के आखिरी स्टेज पर हैं, आपकी मरहम पट्टी कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड है उसका ऐसी एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में अपने जिस्म को अजियत देना मना है। तो इस्लाम में जो लोग कॉन्सेंट्रेशन के आला मकाम पर पहुंचते हैं वो याद इलाही में पहुंचते हैं कि वो अल्लाह को याद करने लगते हैं और उसकी याद में इतना खो जाते हैं कि उन्हें इर्द गिर्द का होश नहीं रहता। ये वाकया तो अभी कुछ अर्सा पहले का मैंने आपसे सुनाया है, वरना एक मशहूर वाकया जिससे आप सभी वाकिफ हैं हजरत अली करमल्ला वजह का है कि जो जहरीला तीर जिस्म से निकलवा लिया था, तकलीफ हो रही थी तीर जिस्म से खींचते वक्त, तो आपने फरमाया कि ये तीर उस वक्त खींचना जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं। फिर जब नमाज पढ़ना शुरू की हजरत अली करमल्ला वजह ने तो लोगों ने तीर खींच लिया और आपको पता भी नहीं चला कि तीर कब उनके जिस्म से निकाल लिया गया। तो हमारे यहां अगर दुनिया से ज़हनी राब्ता हम काटते हैं तो सिर्फ एक ही सूरत में कटता है, वो कि हम याद इलाही में यूं खो जाएं कि हमें गर्दोपेश की कोई होश न रहे, अपने आप की होश न रहे। ऐसे लोग हैं जो इस इन्हमाक के साथ करते हैं। जो हमारे यहाँ चार सिलसिले मारूफ हैं रूहानियत के, सिलसिला कादिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू में तो बंद कमरे में इबादत करते हैं सन्नाटे में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जानबूझ के लोगों के दरमियान बैठ के जिक्र इलाही करने लगते हैं और उसके बाद वो लोगों से कहते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं और जब तस्बीहां कर रहा हूं तो मेरे इर्द गिर्द सब मिलकर खूब शोर मचाना, और आखिर में इस पर चले जाते हैं कि जब वो जिक्र इलाही कर रहे होते हैं तो लोगों को पैसे दे के कहते हैं कि तुम मेरे इर्द गिर्द मिलकर ढोल बजाओ। वो ढोल की थाप पर जिक्र इलाही नहीं हो रहा होता, बल्कि दर हकीकत वो लोग अपने इन्हमाक को चेक कर रहे होते हैं कि हमारा इन्हमाक किस दर्जे का है, कि लोगों की बातें करना या लोगों का शोर मचाना या ढोल की आवाज कहीं हमें जिक्र इलाही से दूर तो नहीं कर देती। ये हमारे यहां भी ये काम होता है, लेकिन याद रखिए कि महवियत वही अच्छी जो अज खुद पैदा हो जाए, वो नेचुरल है कि जब हम, और इसका बड़ा आसान सा तरीका वो हासिल हो जाती। इसमें ऐसे तरीके बताने में एक ही डर होता है मुझे कि अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि शाह साहब आपका इन्हमाक का लेवल क्या है, तो एक चींटी जो जमीन पर चल रही होती है उसकी आवाज भी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर लेगी, तो शर्मिंदगी होती कहते हुए कि साहब मेरा तो इन्हमाक है ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुआ आज तक। लेकिन तरीका मैं आपको बता सकता हूं। वैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक पढ़ते हुए हम सब ने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जहन हमारा भटकने लगता है, मुख्तलिफ ख्यालात आने लगते हैं। उससे जान छुड़ाने का बड़ा आसान तरीका है और उस तरीके के एक नहीं दो फायदे हो जाते हैं। हम इतनी आवाज में पढ़ें जिसको हम खुद सुन सकें, ज्यादा जोर की ना पढ़िए ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो लोग। जब हम इसको इतनी आवाज से पढ़ेंगे जो हमारी जात तक पहुंच जाए, तो अगर हम अपने अल्फाज को खुद सुने बड़े गौर से, जैसे किसी के कुरान पाक पढ़ने पर बड़े गौर से हम सुनते हैं, अगर उतनी ही तवज्जो और गौर के साथ अपनी आवाज को सुनने लगें, तो दो चार बार ये आप करेंगे तो आपको अंदाजा ये होगा कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपके दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। इन्हमाक पैदा हो जाएगा, वो जो ख्यालात का एक सिलसिला चलता है, ट्रेन चल रही होती है जहन में, एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल, दूसरे के बाद तीसरा आता है, वो सब खत्म हो जाता है मामला। तो फिर जब आदमी कुरान पाक पढ़ता है तो फिर कैफियत ये होती है कि कुरान पाक पढ़ते पढ़ते खुली आंखों से कभी सडनली आदमी देखता है कि क्या हुआ मेरी आंखों के सामने, ये तो खाना काबा आ गया। कभी पढ़ते पढ़ते कोई मजार दिखाई देने लगेगा, कभी रोजा मुबारक वो आंखों के सामने आ जाएगा खुद बगैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के। वो दर हकीकत कॉन्सेंट्रेशन हमारी बढ़ जाती है और वो अल्फाज की जो बरकत है जिसको हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं उसके असरात हम पे तारी होने लगते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन बजाय एक्सरसाइज में आदमी चला जाए, योगा की एक्सरसाइज करे, उसके बाद हफ्ते दम की एक्सरसाइज शुरू कर दे। सीधा सीधा मामला रखिए, क्योंकि जैसे मैं पहले भी अर्ज करता रहता हूं कि इबादत वो अफजल है जिसमें इंसान अपने दुनियावी फराइज भूलकर सिर्फ इबादत ही में ना खो जाए। वो तो सभी कर लेंगे, कोई दुश्वार ही नहीं कि हम अपने दुनियावी फराइज छोड़ दें, तर्क दुनिया कर दें, किसी गार में जा बैठें, जंगल में बैठ जाएं, या रिस्क कमाने की मसरूफियत से जान छुड़ा के बहुत राइट ऑन डॉट नमाज पढ़ना शुरू कर दें और उसके बाद कुरान पढ़ते रहें सारा दिन, और बीवी बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अपने रिश्तेदारों पर डाल दें या पड़ोसियों पर डाल दें। वो इबादत इतनी अफजल नहीं है। अफजल इबादत वही है कि जिंदगी इस अंदाज में हम गुजारें कि जब हम दुनिया का काम कर रहे हों, दुनिया की मसरूफियत में हों, तो हम तमाम दुनियादारों से ज्यादा दुनियादार नजर आएं, और जब हम इबादत करें तो हम सब दीनदारों से ज्यादा दीनदार नजर आएं। इबादत वही है। एक जमाने में मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि नया नया दुआ का सिलसिला शुरू हुआ था और लोग ऑफिस में भी चले आते थे दुआ के लिए। मैं इस खौफ से किसी को इनकार नहीं कर पाता था कि ये बंदा खुदा है, मखलूक खुदा है, इसको इनकार करूंगा तो मुझको अल्लाह से छेंटे पड़ेंगे। नतीजा ये हुआ कि मेरे काम में खलल आने लगा दफ्तरी मामलात में, और मुझे ये एहसास बहुत मुझ पे हावी हो गया कि मैं शदीद बेईमानी और बददियानती का मर्तकब हो रहा हूं, क्योंकि मेरा ये सारा वक्त उस अदारे ने खरीदा हुआ है जो मुझे तनख्वाह देता है, और मेरा कोई हक नहीं है कि मैं इस दौरान जाती टेलीफोन भी सुनूं, वो भी बददियानती है। तो वो परेशानी बहुत थी। गवर्नमेंट की मुलाजमत कर रहा था और मुझे अपने सरकारी मामलात में कराची खासा फ्रीक्वेंटली जाना होता था, तो जुमे के मामूलात मेरे इस तरह के रहे कि मैं 12 बजे जाके मस्जिद में बैठ जाता हूं। ये मेरे मुर्शिद साहब भी यही करते थे, उन्होंने ही हुक्म दिया था कि जुमे की नमाज के लिए तुम 12 बजे मस्जिद में जाया करो। तो कराची में एक जुमा आ गया मुझे टूर के दौरान, वहां एक मस्जिद थी, उसमें मैं 12 बजे चला गया, कोई भी नहीं था आदमी वहां। तो जहन पर यही सवार था कि ये मसरूफियत जो है ये मुझे बददियानती की तरफ ले जा रही है, इसका कुछ हल होना चाहिए। मैं सबसे अगली सफ में गया और जब बैठ रहा था तो सडनली नजर पड़ी कि मेहराब की एक साइड पर एक खुतबा सा लगा है, तो उस पे लिखा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त को तीन बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। दिन 24 घंटे का होता है, इन 24 घंटों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बराबर हिस्सों पर तकसीम फरमाया था, 8-8 घंटे का एक एक हिस्सा। पहला हिस्सा मखसूस था साहबा इकराम से मुलाकात के लिए, अमूर ममलकत चलाने के लिए, और बाहर से आने वाले वफूद से मुलाकात के लिए। दूसरा 8 घंटे का हिस्सा मखसूस था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली लाइफ के लिए, और तीसरा हिस्सा मखसूस किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इबादात और आराम के लिए। तो ये तकसीम थी, वो तकसीम मैंने पढ़ी تو میرے ذہن میں اس کا حل آ گیا کہ میں اپنے وقت کو تقسیم کر لوں. تو اس طرح سے میں نہ تو اپنے امپلائر کے حق پہ ڈاکہ ڈالوں گا, نہ اپنی فیملی کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا, اور نہ میں لوگوں کی خدمت سے بھاگوں گا. یہ قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ترک دنیا کی ممانعت ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے, کیونکہ میرے عقیدے اور ایمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت عملی قرآن ہے, عملی اسلام ہے. وہ یہاں شاید کسی نشست میں ذکر ہوا تھا کہ اگر ہم ذرا گہرائی سے دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے, ایک روایت کے مطابق 124,000 پیغمبر ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھا لکھا نہیں تھا, سبھی امی مطلق تھے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر, رسول اور نبی تو قطعی طور پر امی مطلق تھے, جبکہ رب تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے مصلحت تھی بہت بڑی, وہ سب پیغمبر تھے اور انہیں اپنی اپنی امت کو, جس امت میں وہ اتارے گئے تھے, جس قوم میں اتارے گئے تھے, اپنی امت کو لیڈ کرنا تھا, اور جاتے ہوئے اپنی امت کے درمیان اپنی لائی ہوئی کتاب اور اپنی حیات نمونے کے طور پر چھوڑ جانا تھی. اگر کوئی پیغمبر کسی دنیاوی مدرسے میں کسی انسان سے تعلیم حاصل کرتا تو انسان چونکہ خود ناقص ہے, اس کا علم بھی ناقص ہے, اس میں خامیاں ہیں, اس کے نظام میں بھی خامیاں ہیں. تو جب پیغمبر ایسے انسان سے تعلیم پاتا جس کے اندر کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں, ایسا علم حاصل کرتا جس کے اندر غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں, اور ایسے نظام سے باہر نکل کے آتے, وہاں سے ٹرین ہو کر آتے جس کے اندر خامیاں اور کوتاہیاں ہیں, تو ان کی زندگی میں وہ خامیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں جو کہ بعد میں ان کے چلے جانے کے بعد ان کی امت کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ صاحب ہمارے تو نبی نے بھی یہ کام غلط کام کیا تھا تو یہ تو درست ہے, اس کو کرنا چاہیے. تو تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے امی مطلق رکھا اور ان کو خود تعلیم دی. تو رب چونکہ خود کامل ہے اور تمام عیبوں سے بالتر ہے, اس کا دیا ہوا سبق, اس کی دی ہوئی تعلیم بھی فلالیس. یاد رکھیے کہ کوئی نبی, کوئی پیغمبر یا کوئی رسول کوئی بات نہیں کہتا توقت کہ اس کو اوپر سے حکم نہ آ جائے. جس طرح کا اوپر سے پیغام آئے گا وہی اپنی زبان سے ادا کر دے گا وہ. اس لیے پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کہیں بھی کوئی بات غلط نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنے پاس سے کوئی بات کہی ہی نہیں کبھی. اسی طرح جتنے بھی پیغمبر, رسول اور نبی آئے, عجیب اتفاق یہ ہے کہ یا تو وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے, کہ پیدائش سے مہینہ دو مہینے پہلے آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, یا پیدائش کے فوراً بعد یتیم ہو گئے, اور جو ہی ہوش سنبھالا والدہ کے سائے سے بھی محروم کر دیے گئے. تمام انبیاء کا نام دیکھیے, اور انتہائی اسرت اور غربت کی زندگی گزاری ہے تمام انبیاء کرام نے, اور جو یتیم نہیں ہوئے ان کو فورسڈ یتیمی میں سے گزار دیا, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام, بھائیوں نے انہیں اغوا کیا اور بیچ دیا, کنویں میں ڈال دیا, وہ فورسڈ یتیمی میں چلے گئے, غلامی کی زندگی گزار لی. تو سبھی انبیاء کرام نے اس کی پیچھے وجہ ہے، دو طرح کی وجہ، ایک تو وہی ہے کہ انہیں امت کے لیے مثال قائم کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب انسان فاقے کرتا ہے، جب انسان لوگوں کے ناجائز باتوں کا نشانہ بنتا ہے، لوگوں کی طرف سے لگائی گئی تہمتوں کا نشانہ بنتا ہے، تانے سنتا ہے، تو اس کے دل پر کچوکے لگتے ہیں، دل زخمی ہوتا ہے، دکھ بڑھتا ہے اندر، کیونکہ ہے یتیم، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے سوائے رب کے، تو جب کچوکے لگتے ہیں دل پر اور دکھ سوا ہو جاتا ہے تو انسان رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے حضور گڑگڑانے لگتا ہے، تو جب اس درد کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرے گا تو اس میں اخلاص ہوگا، اور وہی اخلاص رب کے بہت قریب لے جائے گا انسان کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دل میں جتنا گداز ہوگا اتنا ہی زیادہ اس دل پر علم اترے گا، زمین جتنی گہری پھاڑی جائے گی اس کے اندر بویا ہوا بیج اتنی ہی اچھی فصل دے گا۔ تو انسان کا دل بھی زمین کی طرح ہے کہ جتنا گہرا پھٹے گا یہ، جتنے کچوکے لگیں گے، جتنا زخمی ہوگا، جتنا درد کا عالم پیدا ہوگا انسان کے اندر، تو امیر آدمی پر تو یہ کیفیت نہیں گزرتی، یہ تو صرف وہی ہے جو غریب ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، مسکین ہے، وہی لوگوں کے تانوں کا نشانہ بنتا ہے، اسی کے دل پر کچوکے لگتے ہیں۔ تو انبیاء اکرام کا علم تو بہت اعلیٰ و عرفا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے، ان کے دل کو تو بہت بڑا سینسیٹیو رسیور ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فاقے کی تکلیف بہت ہوتی ہے، اور انبیاء اکرام نے تو بہت فاقے کیے بچپن میں، کبھی پیٹ بھر روٹی مسلسل میسر نہیں آئی ہے، کہ گئی فاقوں کے بعد پیٹ بھرا ہے، روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ روحانیت کی ترقی کے لیے روزے سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے، روزہ بہت اچھا کیریئر ہے روحانیت کا، جو آدمی روزے کثرت سے رکھتا ہے روحانیت میں اتنا ہی اوپر چلا جاتا ہے، ایک تو بھوکا پیٹ اذیت دیتا ہے انسان کو، دوسرا روزہ رکھنے سے انسان تقوی کی طرف چلا جاتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، تو دوہرے گین ہیں، اسی لیے روزے کی حالت میں ترقی بہت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں روحانیت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، تمام انبیاء کرام روزے کثرت سے رکھتے رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ کا معمول یہ تھا کہ سوائے عید کے روز کے روزے رکھتے تھے، تو سڈنلی یہ احساس پیدا ہوا کہ اس روزے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میرا جسم عادی ہو گیا ہے، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس تکلیف کو حاصل کرنے کے لیے ایک نیا کام کر لیا کہ ایک روز خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اگلے دن روزہ رکھتے تھے، تو آلٹرنیٹ ڈیز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ روحانیت بڑھانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے، تو آج آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ روحانیت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ روزے کثرت سے رکھے جائیں، لیکن روزے رکھے جائیں اپنے تمام تر پروٹوکولز کے ساتھ، فاقے نہ کیے جائیں، اس کے اندر غیبت، جھوٹ، فریب، حق تلفی، لڑائی جھگڑا، ان سب سے اجتناب کرنا ہوگا، یہ روزے کے پروٹوکولز میں سے ہے۔